हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता रानी, SNS RKS कॉलेज सहरसा से, इतिहास विभाग। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो जिसका ईस्वी सन है 1206 से लेकर के 1290 तक, 1200 याद रहे, 1206 से लेकर के 1290 AD, AD मतलब एनी डोमिनिक यानी ईस्वी सन। चलिए, इसमें क्या है कि दिल्ली सल्तनत के जो अंतर्गत है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यह पहला वंश था जिसको गुलाम वंश या दास वंश कहा गया था। जैसे ही दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुआ था तो इसी वंश से शुरुआत हुआ था, तो इसका पहला वंश आता है गुलाम या दास वंश। इनमें क्या होता था कि गुलामों की खरीद बिक्री की जाती थी, गुलामों की यानी इंसानों की खरीद बिक्री की जाती थी। जो लोग गरीब थे, बहुत ही निचले वर्ग से थे, उनको जो बड़े लोग थे, बड़े ओहदे पे जो व्यक्ति थे, वो लोग अपने लिए इन व्यक्तियों को खरीदते थे, उन्हें गुलाम कहा जाता था। ये जो गुलाम थे, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनमें बहुत सारी योग्यताएं थी और ये अपनी योग्यताओं के बल पर सुल्तान तक बन जाते थे। आज का जो रिसर्च है यानी आधुनिक अनुसंधान के अनुसार, गुलाम वंश को जो है सो ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश यानी कि ममलूक एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वैसा गुलाम। तो बता रहे थे कि ममलूक का अर्थ होता है वैसा गुलाम जिससे कि सैन्य कार्य करवाया जाता था, यानी कि जो गुलाम ये लोग खरीदते थे उन लोगों को वो अपनी सैन्य शक्ति के अनुसार इस्तेमाल करते थे, घरेलू कार्य इनसे नहीं करवाया जाता था। वर्तमान में जो है सो इन लोगों को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहा जाता था। मतलब आज के समय में इन लोगों को हम, मतलब शुरुआत में जो लोग आए थे फर्स्टली आए थे और ये लोग अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान बन गए, इसलिए इन लोगों को हम प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए गुलाम वंश को हम लोग तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? तो गुलाम वंश को अगर हम डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, तो पहला आता है कुतुबी राजवंश, दूसरा है शमसी राजवंश और तीसरा है बलवनी राजवंश। कुतुबी राजवंश जिसका कि समय है 1206 से लेकर के 1210 तक, 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक, वहीं शमसी राजवंश यानी कि 1210 से लेकर के 1265 ईस्वी तक। तीसरा आता है बलवनी राजवंश यानी कि 1265 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। अब देखिए, इसमें बात यह है कि कुतुबी राजवंश, इसके जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, उसने अपने नाम पर ही इस राजवंश को कुतुबी राजवंश कहा गया है। उसके बाद आता है शमसी राजवंश है इल्तुतमिश के नाम पर, इसको इल्तुतमिश ने ही चलाया था, इसलिए इसे इल्तुतमिश के ही शमसी राजवंश कहा गया है। उसके बाद है बलवनी राजवंश, यानी कि इसमें सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो बलवन हुआ करता था, इसलिए इसे बलवनी राजवंश कहा गया है। अब देखिए कि कुतुबी राजवंश का जो है संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये हम लोगों ने जान लिया। इसके अंतर्गत हम लोग ज़्यादा शासक नहीं, सिर्फ दो ही शासक को पढ़ते हैं, क्योंकि इसका समय जो है सो बहुत छोटा है, 1206 से लेकर के 1210। 1210 में जो है सो इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है, उसके बाद आ जाता है शमसी राजवंश। तो 1206 से 1210 के बीच पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद कुतुबी राजवंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था। इसलिए हम पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसका शासनकाल है 1206 से लेकर के 1210, यानी 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात आता है आराम शाह, इनका पुत्र आराम शाह 1210 में ही, और यही 1210 के बाद आ जाता है हमारा शमसी राजवंश। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीदा था अपने सैन्य कार्य को करवाने के लिए, यह कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना किया था, गुलाम वंश को तो चलाया था, साथ ही साथ इसने दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना कर दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद लाहौर के जो तुर्क सरदार थे, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आप जो है सो अब इस वंश को आगे चलाएं। तो उसके बाद इन्होंने लाहौर में अपना राज्याभिषेक भी करवाया था और साथ ही साथ लाहौर को इसने अपनी राजधानी भी बनाई थी और यहीं से इन्होंने अपना शासन सत्ता शुरू भी किया था। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है जानने के लिए कि इस जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी उपाधि धारण नहीं किया था, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो भी सुल्तान बनते हैं कोई ना कोई उपाधि धारण कर ही लेते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कोई उपाधि धारण नहीं की, सिर्फ एक ही था सिपह सलार, जो उन्होंने खुद धारण नहीं किया था, उन्हें उपाधि प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने। सिपह सलार और मलिक, सिर्फ यही एक दो पद था, जो एक पद था यही इनके लिए उपाधि भी मानी गई है, सिपह सलार और मलिक, यही दो उपाधियां थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चूंकि अब वो यहाँ के शासक भी बन गए थे तो इन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे क्या होता है ना कि अगर हम वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो फिर हमें सपोर्ट मिलता है, हर तरह का सपोर्ट मिलता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने क्या किया कि गजनी का जो शासक था एल्दौज, उस समय गजनी गौर और गजनी आसपास का क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने गजनी के शासक जो एल्दौज थे उनकी पुत्री से जो है सो खुद विवाह कर लिया। एल्दौज की पुत्री से उन्होंने अपना विवाह किया। उसके बाद उन्होंने सिंध का शासक था, सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ के शासक से अपनी बहन का विवाह किया। और उस समय सिंध का शासक था नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया। और बदायूं का शासक था, शासक नहीं कह सकते, प्रांतपति था, उसमें बदायूं प्रांत था छोटा सा, उसका प्रांतपति था इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस तरह उन्होंने अपना वैवाहिक संबंध आसपास के क्षेत्रों में स्थापित किया। एक चीज़ में जानने वाली बात है, ये है कि इन्हें पूरा कुरान याद था, कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसलिए उन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। यह दान पुण्य में रुचि भी रखते थे, इसलिए इनको लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। एक लेखक है बहुत बड़े, मिनहाज सिराज, इन्होंने लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। हातिम द्वितीय इसलिए कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, एक प्रचलित कहावत है नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ होता है कि उन्होंने बहुत सारे दान भी करते थे लेकिन कभी भी इन्होंने इसका श्रेय नहीं लिया, इसलिए इन्हें हातिम द्वितीय कहा गया है। अब इसमें आता है कि इन्होंने क्या अपने स्थापत्य कला में क्या सब काम किया, तो आइए हम देखते हैं स्थापत्य कला के बारे में। तो इन्होंने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाया जिनका नाम है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। एक राइटर है सर जॉन मार्शल, वो लिखते हैं कि ये जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है यह 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया है। यह कुतुब मीनार के पास ही है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। इसके बाद आता है ढाई दिन का झोपड़ा। यह भी एक मस्जिद है, इसे कोई झोपड़ा न समझे, यह भी एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था, अजमेर शरीफ, जहाँ जो बहुत प्रसिद्ध है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए, उसी अजमेर में इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम था ढाई दिन का झोपड़ा। कहते हैं कि इनका भी निर्माण, इस मस्जिद का निर्माण इन्होंने मठ को तोड़ कर किया था। उसके बाद आता है कुतुब मीनार, ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है, सबसे महान उपलब्धियों में कुतुबुद्दीन ऐबक के महान उपलब्धियों में शामिल है कुतुब मीनार। यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का कहते हैं कि इस निर्माण इसलिए कराया गया था कि अजान करने के लिए इसका निर्माण कराया था कि ये काफ़ी ऊँचे हो, जब आवाज़ सबसे ऊपर हो तो वहाँ से जब आवाज़ हो तो पूरे शहर में उसकी आवाज़ गूंजे। उनके गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, सूफी संत थे, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, जो कि बदायूं के प्रांतपति थे, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। प्रारंभ में जो है ये 4 मंजिल तक ही था, लेकिन इनको 7 मंजिल तक बनवाया गया था, जिसकी ऊंचाई 71.4 मीटर है। आज जो है वर्तमान समय में ये इसका जो है 3 मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कुल कितने, कुल 4 ही इसमें बचे हुए हैं। उसके बाद जब कालांतर में फिरोज शाह तुगलक जब आते हैं तो कुतुब मीनार का मरम्मत करवाते हैं, और सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार का मरम्मत कार्य करवाया था। अब देखिए, एक बदकिस्मती कह सकते हैं कि 1210 में, सन 1210 में जब चौगान यानी कि पोलो नामक खेल खेल रहे थे, जो कि घोड़े पर चढ़कर डंडे के सहारे से खेलते हैं बॉल को, गेंद को, तो ये छत पे खेल रहे थे, तो पोलो या चौगान नामक खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण जो है सो ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तब जो है सो उनका पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन वो इतना योग्य नहीं था कि वो शासन सत्ता संभाल सके, इसलिए जो दिल्ली के सरदार थे उन्होंने उनके दामाद इल्तुतमिश को आमंत्रित किया, और इल्तुतमिश जो है सो आराम शाह का वध कर देते हैं और गद्दी पर बैठते हैं। और इसी के साथ जो है सो हमारा कुतुबी राजवंश समाप्त होता है, जो कि 1206 से 1210 तक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे शमसी राजवंश अगले क्लास में।